जो हम सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं वो है इन्वायरमेंटल साइंस, और हम बात करेंगे नेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। जी हाँ, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस नीलम गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ।
धन्यवाद। आज पर्यावरण विज्ञान एंड इन्वायरमेंटल साइंस जो सीनियर सेकेंडरी का कोर्स है उससे रिलेटेड है, और ये मॉड्यूल 4 जो है हमारा समसामयिक पर्यावरणीय मुद्दे यानी कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज का जो लेसन नंबर 13 है, नेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे, उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से हैं हमारे, बायोडायवर्सिटी की जो लॉस है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, उसके बारे में बात करेंगे। जल और ऊर्जा की कमी जो हमें हमारा जो मुद्दा है राष्ट्रीय उसमें, और खनिज संसाधनों का जितना दोहन हमने किया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। साथ में लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, और पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं और कुछ उसके पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितनी प्रतिशत भूमि है, जो कितना क्षेत्रफल है और उसमें वन कितने हैं। तो जो पहला टॉपिक इसमें जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं भूमि और भारत के वन। तो हमें मालूम है कि भारत साउथ ईस्ट एशिया के प्रायद्वीप पर है, और भारत में जो मुख्य भूमि के साथ साथ दो द्वीप समूह हैं जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो लक्षद्वीप है वो हमारा अरब सागर की तरफ है। तो भारत का अगर हम फिजिकल मैप देखते हैं तो उसमें हम जो रिलीफ है उसमें पता लगेगा कि भारत तीन तरफ से तो समुद्र से घिरा है, और ऊपर जो है वो पर्वत है, हमारा जो हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो जो कुल भूमि है भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारा है, और इसमें लगभग 7,500 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो समुद्र तट है, यानी तीनों साइड से अगर उसका नापते हैं तो ये इतना आता है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण जो है भारत है उत्तरी गोलार्ध में आता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से अगर भारत को देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है, और ये दुनिया का लगभग जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.2% भाग ही है। अब हम बात करते हैं जो भारत की भूमि के बारे में। तो भारत में जो भौतिक विविधताओं के साथ बहुत विशेषता है, यहाँ उत्तर में विशाल विस्तार है जिसमें कि अवसादी और रूपांतरित चट्टाने हैं, पहाड़ की चोटियां की ऊंची श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं, पठार से घिरे हुए क्षेत्र हैं, गहरी और सकरी घाटियां भी यहाँ पर शामिल हैं। भारत में हर तरह की बायोडायवर्सिटी का जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है, यानी पहाड़ हैं, घाटियां हैं, समुद्र है, नदियां हैं, मैदान है, यानी जितना भी जिस तरह का भी इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर सभी दिखते हैं। नदियां जो हैं उत्तर भारत के मैदान को बनाती हैं, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों के विस्तार से क्या है कि वहां से जो मिट्टी बहकर आती है वो उत्तर भारत के मैदानों में छोड़ दी जाती है। तो उत्तर जो भारत की जो सतह है, ऊपरी सतह, वो जलोढ़ मिट्टी से बनी है, यानी कि ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, और इसीलिए जो उत्तर भारत के मैदान हैं वो देश के अनाज का भंडार है, और दक्षिण में जो है प्रायद्वीपीय पठार हैं जो कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित हैं, और यहाँ पर इन पठारों में खनिज बहुत हैं, यानी जितने भी हमें मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स अगर देखें, सोने वगैरह, तो वो उसी वाले क्षेत्र में, दक्षिण के क्षेत्र में ही ज्यादा है। और तटीय क्षेत्र और द्वीप जो है उसमें भी हमारे बहुत सारे पोर्ट हैं, और मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह बने हैं, और बहुत सारी जो समुद्री गतिविधियां हैं उसके लिए वो एक रास्ता प्रदान करते हैं। इसके अलावा द्वीप समूह में मूंगे के बहुत कोरल रीफ हैं, विशाल भंडार हैं, और बहुत समृद्ध जो है जैव विविधता पाई जाती है, और ये रक्षा के उद्देश्यों के लिए भी बड़े सामरिक महत्व के स्थान माने जाते हैं। पहले हमने बात की भूमि के बारे में, अब हम बात करेंगे वन के बारे में। तो किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो वन है, वन क्या, पेड़ पौधे और संबंधित जीव, वन जो है पेड़ पौधे होते हैं और उसमें जो वन्य जीव है उनको आश्रय मिलता है बहुत सारी तरह की, तो संबंधित जीवों में के पैदा होने वाला एक कवर क्षेत्र है। वन क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं, वायु, जल और मिट्टी से ली गई सामग्री का उपयोग करके स्वयं को विकसित करते हैं, और हमें काफी सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की चीजें भी ہمارے جیون کو چلانے کے لیے کئی چیزیں ملتی ہیں ہم سے. ہمیں جیسے لکڑی ملتی ہے, بانس ملتا ہے, ٹھیک ہے, گوند ہے, ریزن ہے, میڈیسنس ملتے ہیں, کلر ہے, ٹینن ہے, ریشے ہیں, اور بھوجن بھی اپلبدھ کراتے ہیں. مطلب لوگوں کو آجیوکا بھی ملتی ہے ونوں سے, اور ونوں میں بہت طرح کے پودے, فلورا اور فونا پائے جاتے ہیں. اور اگر بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت میں لگ بھگ 8,100 پرجاتیاں جنتوؤں کی ہیں, اور لگ بھگ 49,000 جو پرجاتیاں ہیں وہ پودوں کی پائی جاتی ہیں, جس میں کی فلاورنگ پلانٹ کی پرجاتیاں 15,000 کے لگ بھگ ہیں. یہ جو ون ہے یہ ان کا گھر ہے اتنے سارے جنتوؤں کا, پودوں کا. اور ہمالیہ اور پرائدیپی جو چھیتر ہیں ان کا ادھکتر بھاگ جو ہے وہ دیسی جو ونسپتی ہیں ان سے گھرا ہوا ہے, اور ان میں سے کچھ تو استھانک ہیں, یعنی کہ وہ صرف اسی ایریا میں ملتی ہیں, کہیں دوسرے استھان پر وہ نہیں ملتی ہیں. اسی طرح سے جو فلورا ہے اور فونا ہے وہ جیسے اگر ویسٹرن گھاٹ اور ایسٹرن گھاٹ کی بات کریں تو وہ جو سوک جو جاتیاں وہیں ملتی ہیں وہ باہر کہیں اور نہیں ملتی ہیں. اور ون اور ونسپتیوں کا جو ہے کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے ہمیں کچھ کلائمیٹک فیکٹرز کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ تاپمان کیسا ہے, ورشا کتنی ہوتی ہے, گرمی کا کیسی ہے, جل نکاسی کا کیا ہے, وہاں کی مٹی کیسی ہے, اس پر نربھر کرتا ہے کہ ان سب کارکوں کے نردھارت کرتے ہیں کہ وہاں کس طرح کی ونسپتی ہمیں ملتی ہے. اب موٹے موٹے طور پر اگر بات کریں تو بھارت میں کئی طرح کے ون پائے جاتے ہیں, جس کا ڈیٹیل ہم نے پہلے لیسن 6 میں بات کی تھی, پراکرتک تنتر کی جب بات کی تھی اور پریتنتروں کی, اور دوسرا جب ہم نے بات کی تھی ڈیفورسٹیشن کی یعنی کہ ونونمونل کی, تب ہم نے ونوں کے بارے میں بہت وسطر چرچا کی تھی. یہاں صرف ہم ان کے نام ہی بتائیں گے کہ کون کون سے ون یہاں پر پائے جاتے ہیں, جیسے اشن کٹیبندھیے ورشا ون ہو گئے, اشن کٹیبندھیے پرنپاتی ون ہو گئے, شیتوشن چوڑی پتی والے ون ہو گئے, اور شیتوشن سوئی کی پتی والے یعنی شنکوداری ون کہہ سکتے ہیں ہم اسے. الپائن اور ٹنڈرا ونسپتی بھی بھارت میں پائی جاتی ہے. آپ کی بک میں ایک ٹیبل دی گئی ہے جس جو ٹیبل نمبر ہے 13.1, جس میں ونوں کے پرکار, اس کے کھیتر میں کتنا ایریا کور کرتا ہے, اور کون کتنا اس کا جیوگرافیکل ایریا ہے اس کا پرسنٹیج دیا ہے. تو اس میں لیٹسٹ نہیں ہے تو لیٹسٹ میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ اس میں 1999 کے آنکڑے دکھائے گئے ہیں, لیکن اگر 2019 کی رپورٹ کے انوسار اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کا جو کل کھیتر ہے فارسٹ کور ہے ون کھیتر وہ ہے 712,249 اسکوائر کلو میٹر, یعنی کہ اگر ہم اس کا پرسنٹیج نکالیں تو 21.67% ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ون سے گھرے ہوئے کھیتر ہیں یعنی جو 7 پوروتر راجے ہیں وہ کور کرتے ہیں 25.7% اس ایریا کو, ون کا کھیتر ادھر ہے. اس کے بعد مدھیہ پردیش میں ہے 20.68% اور اروناچل پردیش میں 10.8% بھاگ ونوں سے گھرا ہوا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جنسنکھیا وردھی, کیونکہ جو بھی پرابلمس جو بھی ایشوز شروع ہوتے ہیں وہ ہمارے جنسنکھیا وردھی کے کارن ہی ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کتنی جنسنکھیا تھی اور آج ہماری جنسنکھیا کتنی ہے, وہ بہت بڑھ چکی ہے, لیکن ہمارے جو سنسادھن ہیں وہ تو سیمت ہیں, اسی لیے یہ ایشوز بھی بنتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مانو کی بڑھتی جنسنکھیا ہے اس کی سمسیا جو ہے پریاورن کی سب سے مہتوپورن سمسیاؤں میں سے ایک ہے, اور مانو جن سنکھیا بڑھنے سے کیا ہوتا ہے پریاورن پر دو طرح سے خطرہ اتپن ہوتا ہے, ایک تو لوگوں کی سنکھیا بڑھتی ہے اور دوسرا جو پریاورن پر جو پرتی ویکتی پربھاو ہے وہ بھی اس پر بھی اثر پڑتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو 40 سال 50 سال کی اگر بات کرتے ہیں ہم تو پہلے 2.5 ارب کے قریباً جن سنکھیا تھی پورے دنیا کی, آج وہ 6 ارب سے اوپر 7 ارب سے اوپر ہے, اور اسی طرح سے اگر ہم اپنے دیش کی بات کریں تو پہلے سے اب اگر لیٹسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو لگ بھگ 135 کروڑ جن سنکھیا ہے. سنسادھن ہمارے سیمت ہیں اور جن سنکھیا ہماری بڑھتی آ رہی ہے, ہر کسی کو وہ سویدھائیں چاہیے اپنی آجیوکا چلانے کے لیے, یعنی جو مول ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ آوشکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے ہی چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہمارے کو اس کے لیے مشکلیں ہوتی ہیں ہم فیس کرتے ہیں. اگر ہم جن سنکھیا کو پریبھاشت کرنے کی کرتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے کہ جن سنکھیا کیا ہے, ایک ایسے ویکتیوں کا سموہ جو ایک ہی کھیتر میں رہتا ہے اور پرجنن اور آنوونشک پدارتھوں کو آپس میں एक दूसरे में प्रयुक्त करने के लिए सक्षम हो। अब जनसंख्या का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आर्थिक दृष्टि से जनसंख्या जो है उपभोक्ता निर्माताओं से मिलकर बनती है, और इसीलिए हमें इसका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे को अध्ययन में क्या किस तरह से सहायता करती है? वर्तमान और भविष्य में उपलब्ध मानव शक्ति के आंकड़े प्रदान करती है डेमोग्राफी। दूसरा, वर्तमान और भविष्य में जो वस्तुएं हैं या सेवाओं की जो अपेक्षित कुल मात्रा का अनुमान है। और तीसरा, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और भाषाई सौहार्द को बढ़ाने में भी मदद करती है डेमोग्राफी। अब हम बात करते हैं कि मानव जनसंख्या के मुख्य काल या मुख्य आवर्त यानी मेन पीरियडिक कौन क्या है। अगर हम हिस्ट्री की देखें, इतिहास के माध्यम से देखें, तो विश्व में जनसंख्या विकास के जो काल हैं उनका हमें पता लगता है किस तरह से, कितने तरह के। एक तो पहला जो हमारा नोमेडिक लाइफ थी यानी हंटर एंड गादरर की स्टेज में थे। उसके बाद में जब कृषि का विकास हुआ तो उस समय की जो सोसाइटी थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ, औद्योगिक क्रांति जब हुई, उस समय भी बदलाव हुए जनसंख्या में। और आप वर्तमान परिवेश में भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब नोमेडिक यानी शिकारी और संग्राहक की जो एक प्रारंभिक अवधि थी, उस समय जो जनसंख्या थी लगभग 1 लाख के आसपास होगी, से भी कम ही थी। लेकिन जब कृषि का विकास हुआ 12,000 साल पहले, तो उस काल में जनसंख्या के घन लोगों के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई और मानव जनसंख्या में पहली दफा बहुत ज्यादा बढ़ोतरी पाई गई, देखी गई, क्योंकि लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। लोग ग्रुप बना के, समूह बना के रहने लगे थे, एक दूसरे से व्यापार करने लगे, आदान प्रदान करते थे एक चीज का दूसरी चीज के साथ में, और इस तरह से वो उनकी संख्या बढ़ी, क्योंकि उन्होंने शेल्टर बना लिए थे, जंगली जानवरों से उनको बचाने के लिए उन्होंने औजारों का निर्माण किया था, तो इस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। तीसरा, जब 200 साल से पहले जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस समय क्या हुआ, उसके कारण जो था अच्छा भोजन आपूर्ति होने लगा, सुधारित स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलने लगी, जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि में अचानक इतनी बढ़ोतरी हुई जो आज हम देख रहे हैं। अब वर्तमान में क्या है कि जो देश की जनसंख्या है 135 करोड़ है, वो घनी और औद्योगिक देशों में तो नीचे जा रही है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज में ये कम है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें ये तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हम आर्थिक पैमाने से जनसंख्या को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, कि यदि किसी क्षेत्र के संसाधन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा से अधिक हैं, यानी संसाधन ज्यादा हैं और लोग कम हैं, तो वह क्षेत्र जो है आबादी के कम जनसंख्या के क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। उसी तरह से अगर संसाधन केवल काफी हैं और ऐसे क्षेत्र जो हैं द्वितीय जनसंख्या वाला या चरम सीमा वाला क्षेत्र कहा जाता है, और यदि किसी क्षेत्र में संसाधनों का अति दोहन होता है और उस क्षेत्र के जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान सेवाएं वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं, उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्षेत्र अति जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों की न केवल संख्या अपितु कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और प्रायः गुणों में ऐसे असमानताएं सामाजिक तनाव और असंतुलन की स्थिति को पैदा करने का कारण भी होती हैं। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफी की कुछ जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं। तो जैसे आबादी के डेमोग्राफी की जो डेफिनेशन है वो ये, जनसंख्या की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो आबादी है उसके विभिन्न पहलुओं को अध्ययन जिस तरह से अध्ययन किया जाता है उसमें, उसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं, यानी कि आबादी के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को ही हम जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कहते हैं। और इसके अध्ययन के लिए क्या क्या मानदंड कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आकार हो गया, विकास हो गया, आयु की संरचना हो गई, जनसंख्या की लेन देन हो गया, प्रजनन हो गया, जन्म दर है, मृत्यु दर है, जीवन का स्तर है, और वृद्धि और प्रवास जो है इसके स्टैंडर्ड हैं। यानी अगर किसी डेमोग्राफी की अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें उसका उसके लिए ये चीजों का अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकार की। तो जनसंख्या का जो आकार है वो किसी देश की या उस क्षेत्र किसी क्षेत्र के व्यक्तियों की संख्या से काउंट कर सकते हैं। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जो की गई है उसमें उससे पता लगता है कि 2011 का जो आंकड़ा है वो, और अगर लेटेस्ट की हम बात करते हैं तो वो आंकड़े में करीबन 18 से 20 करोड़ की वृद्धि हुई है, और इस समय जो प्रेजेंट में जो जनसंख्या है वो है हमारी 135 करोड़ के लगभग। एक सवाल ये आता है, क्या हम 135 करोड़ लोगों के लिए जो बेसिक जरूरत हैं क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं, क्या उनको सभी को वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं? तो शायद ये आंसर हमारा हाँ पूरी तरह से नहीं हो सकता है। कुछ हद तक हम करा पा रहे हैं लेकिन पूरा 100% नहीं कह सकते हैं, और यही एक पर्यावरणीय से संबंधित भी एक मुद्दा है, एक पहलू हो जाता है जो आज हमारे हमें ये फेस करना पड़ रहा है। आज देश के सामने ये मुद्दा है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या को हर मूलभूत सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी सुविधाएं हैं वो हम उपलब्ध करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा है जनसंख्या का विकास। तो क्या है कि अलग अलग समय पर जनसंख्या की वृद्धि दर के रूप में मानी जाती है, व्यक्त की जाती है, और वृद्धि दर जो है वो 1000 लोगों के ऊपर के अनुसार परिवर्तन की दर है और जनसंख्या के में परिवर्तनों को निर्धारित करती है। और जनसंख्या वृद्धि की दर की जो गणना की जाती है वो कैसे की जाती है कि विकास दर की गणना करने के लिए हमें जन्म दर की मृत्यु दर की गणना करनी पड़ेगी, तभी हम उसको विकास दर को निकाल सकते हैं। और जन्म दर क्या है कि ऐसी दर जिसमें आबादी में होने वाले जन्मों की संख्या का हिसाब रखते हैं, और सपोज कि एन जनसंख्या है और बी जो है प्रति यूनिट जन्मों की संख्या है, तो पूरी जनसंख्या कैसे को लिखेंगे हम, एन और बी हमारी जन्म दर है, तो तब अगर बी स्मॉल बी जो है वो जन्म दर है और जनसंख्या में जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की संख्या हो गई, एन जो है संपूर्ण जनसंख्या में एक निर्धारित समय पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या हो जाती है, तो इसको निकालते हैं स्मॉल बी को इज इक्वल टू कैपिटल बी अपॉन एन। उसी तरह से मृत्यु दर का है, तो मृत्यु दर क्या है कि ऐसी दर जिसमें जनसंख्या में पाए जाने वाले जो लोग जो जितने जन्म हुए थे उनमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी दर जिसमें जनसंख्या में पाए जाने वाले मृत्यु को कुल जनसंख्या का पाया जाना शामिल होता है, उसे भी हम जैसे बर्थ को हमने बी से डिनोट किया था, डेथ को हम डी से करते हैं, और डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यानी जो कैपिटल डी है वो क्या है कि जो एन जनसंख्या है उसमें प्रति यूनिट में होने वाली मौतों की संख्या है, और स्मॉल डी को हम मृत्यु दर रेट ऑफ डेथ कहते हैं, और एन जो है कैपिटल एन है जनसंख्या में प्रति इकाई होने वाली जो मौतें हैं उसको हम उसमें शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं विकास दर की। विकास दर क्या है कि जो जन्मों की संख्या में से होने वाली जो यूनिट वाली मौतों की को उसमें से अगर घटा दें, यानी जन्म जितने हुए हैं और मरे कितने हैं अगर उसे हम घटा दें तो जनसंख्या में कुल लोगों की संख्या से विभाजित करेंगे तो जो नाम निकलेगा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा विकास दर, यानी उसको हम विकास दर कहते हैं। तो विकास दर क्या हुआ कि जन्मों की संख्या में से होने वाली प्रति यूनिट मौतों को उनमें से घटाकर जनसंख्या में से लोगों की कुल संख्या में विभाजित करने के परिणाम स्वरूप जो निकलेगा जो संख्या हमें मिलेगी वही हमारी विकास दर होगी। और जब इसकी गणना करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, कैपिटल यानी प्रति यूनिट समय में जन्म की कुल संख्या, कैपिटल डी यानी प्रति इकाई समय में कुल मौतों की संख्या, कैपिटल जी यानी प्रति यूनिट समय में व्यक्तियों की कुल जन्मों और मौतों की संख्या के बीच का अंतर, कैपिटल एन यानी जनसंख्या में प्रति में जो व्यक्ति हैं उनकी कुल संख्या, स्मॉल जी जो है वो है प्रति यूनिट समय के लिए वृद्धि दर। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकल, क्योंकि गणना करनी है तो न्यूमेरिक फॉर्म में आना पड़ेगा, तो इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा जी इज इक्वल टू बी माइनस डी अपॉन एन, अर्थात मतलब ये कह सकते हैं कि जो जी है स्मॉल जी बराबर इज इक्वल टू होगा कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और स्मॉल जी अपॉन स्मॉल जी, वो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन एन, मीन्स कि प्रति यूनिट व्यक्तियों में जो कुल के जो कुल जन्म और मृत्यु के समय के बीच अंतर जो है वो होगा, और ये जनसंख्या में कुल व्यक्तियों की कुल संख्या जो है। अब हम मृत्यु की बात करते हैं, तो मृत्यु क्या है, जो व्यक्तियों के मरने को संदर्भित करता है उसको बताता है। यानी जनसंख्या में सदस्यों की मृत्यु किसी भी तरह से हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं, वो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, वो दुर्घटना हो सकती है, वो एजिंग यानी बुढ़ापे के कारण भी मर सकते हैं, कई बार प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे भी मृत्यु होती है, कई बार वॉर होता है उनसे भी मृत्यु होती है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, और ये जो है मृत्यु दर के बराबर ही होते हैं। और जन्म का क्या है, जन्म जो है जनसंख्या में नए लोगों के जुड़ने के, यानी बच्चे जो नए लोगों के जुड़ने की जो अभिव्यक्ति है उसी को हम जन्म कहते हैं, और ये जो है जन्म दर के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना। तो अगर जनसंख्या में जो व्यक्ति हैं वो इधर से उधर अगर जाते हैं तो उसे हम प्रवासन यानी माइग्रेशन कहते हैं। और व्यक्तियों का अपने देश के अंदर के बाहर जाने के लिए को हम कहते हैं इमिग्रेशन, यानी वो देश से बाहर जा रहा है। और ये जो इमिग्रेशन है वो कई कारणों से हो सकता है, नौकरी की तलाश में, अच्छी जीविका के लिए, या बेहतर अवसर मिल रहे हैं, या कहीं बेहतर शिक्षा सुविधाएं हैं कहीं है। और कई बार हम इलीगल हस्तांतरण भी करते हैं, कई बार युद्ध हो या प्राकृतिक आपदाएं हैं या आंतरिक गड़बड़ी के चलते भी हम किसी देश में गलती से ही पहुंच जाते हैं। तो ये भी हमारे, अगर हमारे देश में कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी दूसरे देश में चले जा रहे हैं, तो ये हमारी इमिग्रेशन में आता है। और इमिग्रेशन है और दूसरा इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन में क्या होगा, इमिग्रेशन में तो एक अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन में हम अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। यानी कि हमारे देश के जो युवा हैं आज यूएसए है, यूके है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है जाते हैं, और फिर वो वहीं बस भी जाते हैं। और अगर व्यक्ति अपने ही देश में अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाता है तो उसे हम कहते हैं आंतरिक अप्रवास यानी इंटरनल इमिग्रेशन। तो ये इंटरनल इमिग्रेशन भी क्या जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है? हाँ, करता है। किस तरह से? क्योंकि जो पलायन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो उसके कौन बहुत सारे रीजन हैं, जो कि रोजगार हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, प्रभावित परिवार हो सकता है, विवाह के कारण भी हम एक शहर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं, वहां बसते हैं, अन्य कारण भी हो सकते हैं। इस तरह से ये संख्या करोड़ों में होती है। देश के अंदर का जो आंतरिक जो पलायन है वो अधिकतर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरों की तरफ, बहुत सारे रीजन है जिसके चलते वो आते हैं, तो इससे क्या होता है, जो ग्रामीण शहरी जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्र है उसकी तुलना में उसमें ज्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि कृषि के लिए जो जमीन थी बहुत पहले ज्यादा थी, लेकिन अब उन्होंने वो बेच दी या कैसे उसमें हमने अर्बन एरिया यानी शहरीकरण कर दिया है, इंडस्ट्रीज लगा दी हैं, तो वहां पर अब रोजगार कम हो गए हैं, श्रम की मांग कम हो गई है वहां के जो है। और शहरों में क्या है कि बेहतर रोजगार के अवसर मिल जा रहे हैं, शहरों में शिक्षा की बेहतर सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं होती है, और हमारी जो बेहतर जीवन मतलब लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाती है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। इसीलिए गांवों से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में पलायन ज्यादा होता है, यही इसका मुख्य कारण है। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में। ये क्या होता है कि जब भी किसी चीज की जो वृद्धि है वो इस प्रकार से होती है कि जो वृद्धि का आकार है वो किसी भी समय निर्धारित अनुपात में कुछ बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जैसे कि मानव की जो वृद्धि है उसका नमूना भी वैसा ही होता है जैसे कि आपके बुक में दिखाया गया है। 13.2 जो चित्र है उसमें बैक्टीरिया की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है उसी की तरह से मनुष्य की भी होती है। तो यहाँ पर अब ये देखेंगे कि प्रत्येक अतिरिक्त करोड़ मानवों की जनसंख्या और जो मानव की विकास दर और बैक्टीरिया की जो विकास दर है वो एक जे कर्व बनाती है, जे आकार का ही कर्व बनाती है उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त करोड़ मानवों के जनसंख्या में शामिल होने में समय कम लगा होगा। जैसे 2 करोड़ तक पहुंचने में 130 वर्ष लगे, 3 करोड़ तक अगर पहुंचे तो उसमें 30 साल लगे, लेकिन अगले 1 करोड़ जो लोग हैं वो केवल 11 वर्ष, जो आपको चित्र दिखाया गया है उसमें सिर्फ 11 वर्ष में ही इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई। तो ये कह सकते हैं कि जब जनसंख्या पूर्ण क्षमता रखने योग्य स्थिति में पहुंच जाती है, यानी क्षमता ही संतुलन बनाए रखती है, तो विकास दर घट जाती है और वो जो दर है वो जे आकार से एस आकार में तब्दील हो जाती है, यानी जो कर्व का आकार है पहले जे जो था वो अब एस में बदल जाता है। अगर हम बैक्टीरिया के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया प्रत्येक 30 मिनट में डिवाइड हो जाते हैं और उनकी जो संख्या है वो उस घातीय वृद्धि के अनुसार बढ़ती जाती है। जैसे कि चित्र में दिखाया है कि शून्य से जो मृत्यु दर है इसमें शून्य मान लेते हैं, लेकिन फिर भी जो बैक्टीरिया की प्रत्येक पीढ़ी के जो बैक्टीरिया की कुछ प्रतिशत जनसंख्या जो खत्म हो जाती है, मर जाती है, और तब भी जो है वृद्धि होती रहती है और वो अपनी उच्चतम संख्या में पहुंचने में थोड़ा समय जरूर, लेकिन फिर भी संख्या में वृद्धि होती है। और जब आंकड़ों से लेकर अब ग्राफ बनाते हैं जब ये, तो वो आकार जो है जे शेप में आता है। मैंने दोनों ग्राफ कर्व के बारे में बात किया है, 13.2 में मानव का जो प्राचीन पाषाण युग से लेकर जो वर्तमान युग में तक देखेंगे तो घात जो वृद्धि हो रही है वो उसमें जे कर्व भी बनाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, है जनसंख्या की संरचना का, जो क्या है कि जब जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो ये मालूम होता है कि जनसंख्या की संरचना कुछ विशेषताएं जैसे घनत्व हो गया, प्रसार हो गया, एज स्ट्रक्चर हो गया, सेक्स रेशो, उन पर भी निर्भर करती है, उनके द्वारा निर्धारित होती है। तो ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं डेमोग्राफी के लिए, अध्ययन के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी की, कि डेंसिटी क्या है, कि घनत्व जो है एक इकाई क्षेत्र में प्रजातियों के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है और यह किसी जनसंख्या को की सफलता को दर्शाता है। और किसी क्षेत्र के पूरे लोगों की अगर गिनती की जाए तो वो जनगणना होती है, यानी सेंसस होता है। और ऐसी जो जनगणनाएं हैं सेंसस है, वो हर 10 साल में हमारे देश में आयोजित किया जाता है नियमित रूप से, जैसे 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, उस तरह से। और फिगर नंबर जो 13.1 है इसमें आपको 2001 का अनुसार जनगणना के अनुसार ही जो भारत का जनसंख्या घनत्व वो दिखाया गया है, लेकिन अभी लेटेस्ट का अगर देखेंगे तो आप उसको देख सकते हैं, 2011 का जो डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी का है वो आप देख सकते हो, हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उसमें आप उसका मैप देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो एट प्रेजेंट जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो है 2019 के आंकड़ों की बात अगर करते हैं हम, तो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर उतने लोग रहते हैं, जबकि जापान में ये आंकड़ा 332 वर्ग किलोमीटर का है, स्क्वायर का है। नीदरलैंड यानी हॉलैंड की अगर बात करते हैं तो ये आंकड़ा 456 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है। बांग्लादेश का 915 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। माल्टा जो द्वीप है, आइलैंड है, उसमें ये जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 1161 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये चित्र जो दिखाया गया है उसमें ये दिखाया गया है कि बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। और वो समस्याएं क्या है कि जब जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है उस के दौरान जो कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और वो समस्याएं काफी गंभीर होती हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, जीवन की वो बुनियादी सुविधाएं सीमित हो जाती हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, भूमि है, ईंधन है, उसकी उपलब्धता कम हो जाती है, घट जाती है। प्राकृतिक संसाधन की मैंने बात कर दी, आवश्यक वस्तुओं की कमी के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हो जाती है। आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण असमानता भी बढ़ जाती है। किसी के पास पैसा है वो उस चीज को खरीद लेते हैं, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो उस चीज को नहीं खरीद पाते हैं। कृषि योग्य भूमि कम हो जाती है, कृषि उत्पादन में कमी और वनों के आवरण भी घट जाता है, और परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो फिर वो कुपोषण हो जाता है उसके, और वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, और रोगों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है, बन जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की मांग हो जाती है, नौकरियों के अनुपात में गिरावट आ जाती है, और फिर इससे क्या होता है, हमारी मेंटल पीस यानी मानसिक जो अशांति है, मेंटल पीस नहीं मिल पाती है, यानी अशांति का वह कारण बन जाती है, हम परेशान रहने लगते हैं। पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं की कमी हो जाती है या फिर उसका जो स्तर है वो घट जाता है, और इससे क्या होता है कि अशिक्षित लोगों की, इलिटरेट लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। वायु, जल, मृदा प्रदूषण से स्वच्छता का दबाव होता है या प्रदूषण होता है जल का, वायु का या मिट्टी का, तो उससे क्या होता है कि स्वच्छता पर दबाव पड़ता है, और कुल मिलाकर अगर देखें तो मानव के स्वास्थ्य पर भी इसके हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सन की यानी फैलाव की। तो जो जनसंख्या के फैलाव का जो पैटर्न है वो अपने जो व्यक्तिगत सदस्यों का एक क्षेत्र के सापेक्ष फैलाव कहलाता है। उदाहरण अगर लें तो हम देखेंगे कि जो मानव जनसंख्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर तरफ समान नहीं है, एक समान नहीं वितरित है। कुल भूमि का केवल एक तिहाई भाग ही मनुष्यों की आबादी से है, और इस एक तिहाई क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्रों में वो कम है और कई कई क्षेत्रों में वो ज्यादा घनी आबादी होती है। तो इन्हीं वितरण की क्या करता है, वितरण जो है बदलाव जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी उपलब्धता पर, यानी जो हमें जरूरत है उनकी आपूर्ति अगर जहां ज्यादा है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, और जहां कंडीशन हार्श होती है वहां पर ये जनसंख्या कम हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बदलाव, वितरण बदलाव जो है जीवन की आवश्यकताओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और अगर ये देखा जाए तो विश्व का, दुनिया का 56% भाग जो है वो एशिया में रहता है, यानी अगर एशिया के कंट्री, अगर आप चीन को देख लीजिए, भारत को देख लीजिए, तो और भी कंट्रीज हैं जहां पर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और इस तरह से आप अपने एरिया का भी एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आपके एरिया का ये जो डिस्पर्शन है या फैलाव है वो किस तरह का है। अब हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर की, यानी आयु संरचना की। यानी किसी जनसंख्या में लोग अलग अलग आयु के लोग होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हर आयु वर्ग के व्यक्तियों के अनुपात को हम उस जनसंख्या की आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर कहते हैं। और आपके बुक में जो टेबल दी है, टेबल नंबर 13.3, जिसमें 1991 का आंकड़ा दिया है, 11 का, 21 का, 31 का, जिसमें बच्चों का, वयस्क का और वृद्धों का है। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि 2019 में जो बच्चों का ग्रुप था वो उसका 62%, जो 15-16 वयस्क का जो ग्रुप है वो 67%, और जो 18-69 यानी जो वृद्ध लोग हैं उनका परसेंटेज 6.38% है। अब ये जो एज स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करना इतना जरूरी क्यों हो जाता है, क्या जरूरत है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि क्यों जरूरत है और हम इसको कैसे देखते हैं और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। यानी जो आयु है वो रूपरेखा की वर्तमान और भविष्य स्थिति को निर्धारित करती है, पर्यावरण पर संभावित प्रभावों को बताती है, जनसंख्या के इतिहास की पूरी जानकारी देती है, उपलब्ध और भविष्य कार्यबल यानी जो 15-59 का एज ग्रुप है यानी जो ह्यूमन पावर है उसको बताती है, उन वृद्ध लोगों की स्थिति जिनको अब भविष्य में सामाजिक सहायता की आवश्यकता है उसका डेटा वो ब्यौरा देती है, वर्तमान और भविष्य में शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का क्या प्रक्षेप होगा, क्या प्रोजेक्ट होगा वो बताती है, नौकरी संबंधी आवश्यकताओं का प्रोजेक्शन करती है, चिकित्सा, सामाजिक, आप आवास संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो प्रोजेक्शन है वो दिखाती है और आवश्यकताओं का प्रक्षेप भी दिखाती है, साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक स्तर का भी बताती, स्तर के बारे में भी बताती है। तो ये भी एक अपेक्ट, जैसे आप लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो हम 0 to 14 एज ग्रुप का और 15 to 59 और 59 से अबव वाले का एक हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं, जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं उस तरह से हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो क्या है कि आइडियल फॉर्म में अगर हम बात करें तो किसी जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं की संख्या में संतुलन होना चाहिए, यानी अगर 1000 है तो 1000 मेल और 1000 फीमेल होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक रूप से जो लड़की है उसका जन्म, लड़की के जन्म से अधिक जो है बॉयज यानी नर जन्म लेते हैं, यदि समाज में लिंग के विषय में कोई भेदभाव नहीं है, फिर भी इसका जो स्तर है उसमें डिस्क्रिपेंसी है, स्थिर नहीं है, या तो कम है या क्योंकि हमें संतुलित होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। और हमारे देश में जो 1000 पुरुषों पर 1901 का अगर आंकड़ा देखते हैं तो 972 महिलाएं होती थी, 2001 में ये 933 पर आ गया था आंकड़ा, और आज जो सेक्स रेशो है वो 1000 पुरुषों पर 924 महिलाएं हैं, और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 48.04% है और जो मेल पॉपुलेशन है वो 51.96% है। और सबसे ज्यादा कम आंकड़ा हमारा हरियाणा और दिल्ली में है और चंडीगढ़ में है। तो आज हमने नेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज में जब बात की है तो हमने पॉपुलेशन पर बात की, वन और भूमि पर बात की। आज जितना बताया गया है उसको आप अच्छे से देखें, कुछ एक्टिविटीज बोली हैं वो करें। धन्यवाद।